ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभी भक्तों का स्वागत है हमारी राम कथा के दूसरे दिन। अयोध्या कांड में प्रभु श्री राम का वनवास बताया गया है और प्रभु श्री राम के भक्तों की आंखों में आंसू ले आती है ये लीला। हालांकि प्रभु श्री राम का चरित्र ऐसा है कि हर एक प्रसंग उनके जीवन का हमारे आंखों में आंसू ले आते हैं और यही उद्देश्य है किसी अवतार का, कि हमारा ये जो कठोर हृदय है उसे नरमाहित कर कर मृदु बनाए। इसलिए जो वैकुंठ पति हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, वो वन में तर बितर विचरण करते हैं, ऐसी लीला करते हैं जिससे हमारा ये जो कठोर हृदय है इसे सुनकर, केवल सुनने मात्र से हमारा हृदय नर्म होना चाहिए, पिघलना चाहिए। तो भगवान इस अयोध्या कांड में सबसे पहली शिक्षा ये दे रहे हैं कि इस भौतिक संसार में किसी भी स्थिति पर हमें विश्वास नहीं रखना चाहिए। स्थिति क्या थी उनके जीवन में? कल राज्याभिषेक होने वाला है और कोई व्यक्ति यदि होता तो बिल्कुल कोई आशंका नहीं रखता कि राज्याभिषेक होगा या नहीं होगा। हमारी भी स्थिति कई बार ऐसी ही होती है, जब हमारे जीवन में कुछ कम मात्रा में हमारा भी जब राज्याभिषेक होने जाने वाला होता है, अर्थात सफलता, सफलता की सीढ़ी सामने है और हम जानते हैं उस सीढ़ी पर कैसे चढ़ना है और हम जानते हैं कि और कोई नहीं चढ़ सकता हमारे अलावा, अगल बगल में भी कोई नहीं है, सीढ़ी पक्की और जो सफलता का चरम उद्देश्य है वो भी दिखाई दे रहा है, स्वयं में क्षमता, कोई स्पर्धा करने वाला भी नहीं, तो कैसे हम इस आशंका में आ सकते हैं कि ये सीढ़ी पर मैं नहीं चढ़ पाऊंगा? यदि उस समय भगवान भी आकर कह दें तो भगवान पर हम शंका कर लें, परंतु कई बार हम अपने स्वयं की क्षमता पर बिल्कुल आशंका नहीं करते। तो यहां पर प्रभु श्री राम अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि देखो, मैं सारे ब्रह्मांड का नायक, मेरा राज्याभिषेक होने वाला है। और ऐसा नहीं कि प्रभु श्री राम एप्लीकेशन दिए थे राज्याभिषेक के लिए, ऐसा नहीं कि इलेक्शन आया था और इलेक्शन में फिर उन्होंने कैंपेनिंग कैनवसिंग किया और पूरे अयोध्या में फिर अपनी तरफ सारा वोट कर कर और फिर अब राजगद्दी उनको मिलने वाली है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पूरी अयोध्या, महाराज दशरथ, यहां तक कि कई कई सभी मंथरा भी, जब तक कि सरस्वती मंथरा की जिह्वा पर नहीं आई तब तक ये सभी प्रभु प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के समाचार से इतने प्रफुल्लित थे और ऐसी तैयारियां चल रही थी, परंतु भगवान ने ये दिखा दिया कि भौतिक संसार का नियम क्या है, अशाश्वतम, हर एक वस्तु हर एक स्थिति अशाश्वत है। और इतना नहीं कि केवल अशाश्वत, तो कोई व्यक्ति कहे कि भाई ठीक है मैं जिस दुख में हूं तो वो भी अशाश्वत होगा। अभी जो मंदी का पीरियड चल रहा है, ये आध्यात्मिक मंदी का भी पीरियड तो कब से चला आ रहा है कलयुग में, परंतु ये आर्थिक मंदी का पीरियड चल रहा है, रिसेशन। तो भगवान गीता में कहे हैं अशाश्वत, तो ये भी अशाश्वत, तो ये भी जाता रहेगा। परंतु भगवान केवल ये नहीं कहे हैं कि ये भौतिक संसार केवल अशाश्वत है, दुख आलय। तो चाहे हम अपने आप को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जिसमें हम सोचे कि मैं सुखी हूं, हालांकि वो बाहरी रूप से दिखाई देगी वो स्थिति, परंतु वो स्थिति कैसी है, एक उदाहरण दिया गया है। जैसे कि यहां पर प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक, और उस समाचार के तुरंत पश्चात समाचार उन्हें मिला राज्याभिषेक के बदले वनवास। अब देखिए दोनों में कितना अंतर है। अरे यदि इतना भी कह देती कैकेयी कि तुम्हें राज्य नहीं मिलेगा, तुम केवल अपने कमरे में रहो, फिर भी ठीक था। परंतु ये नहीं, राज्य भी नहीं मिलेगा और यहां पर भी नहीं रहना, ऐसा भी नहीं कि कहीं अयोध्या में किसी भाड़ी के मकान पर रहो, अयोध्या में भी नहीं रहना। और ठीक है, अयोध्या के बाहर बहुत से नगर थे, किसी दूसरे नगर में, किसी दूसरे प्रांत में, नहीं वहां पर भी नहीं। अरे तो जाऊं कहां, वन में। देखिए एक राजा होते होते अब यह स्थिति आ गई। तो हमने कितनी बार ऐसे अनुभव किया है कि हमारा भी नाम अनाउंस हो गया, प्रमोशन होने वाला है कंपनी में, अगले दिन इंक्रीमेंट के साथ प्रमोशन पोस्टिंग भी, कुर्सी मिलने वाली है, अलग से आपका कैबिन होगा, आपका टेलीफोन होगा, सब कुछ आपका अलग। और देखो तो फिर सुबह सुबह आप गए तो नोटिस आपके सामने। बहुत विदेश में ये बड़े बड़े कंपनियों में अक्सर रोज डर डर कर लोग जाते हैं अपनी ऑफिसों में, और अपने टेबल पे यदि कुछ पर्चा दिख गया दूर से तो दिल की धड़कन ऐसे ऐसे बढ़ जाती है। और वो पर्चा होता क्या है, नोटिस। वो नोटिस दिया जाता है कि आपने जो भी सेवाएं की हैं अब तक, हम कृतज्ञ हैं और हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि इस कंपनी को अब आपकी कोई आवश्यकता नहीं। इतना ही नहीं, वो उनका जितना भी सामान वो ऑफिस का वो सब पहले से पैक कर कर रेडी रखते हैं, और दो एस्कॉर्ट गेट तक पहुंचाने के लिए। इसलिए हम जब विदेश में थे तो वो कहा करते थे कि आदमी जब घर से बाहर निकलता है वहां पर, तो उसे कोई ठिकाना नहीं कि उसकी नौकरी रहेगी कि नहीं। तो जब घर से निकलता है तो कोई ठिकाना नहीं कि नौकरी है उस दिन कि नहीं है, और जब ऑफिस से घर आता है तो कोई ठिकाना नहीं कि पत्नी घर पे रहेगी कि नहीं रहेगी। तो दोनों का कोई ठिकाना नहीं। तो ये स्थिति अब देखिए, कोई कहे कि यदि त्रेता युग में प्रभु श्री राम के साथ ऐसा हुआ कि अब प्रमोशन के साथ इंक्रीमेंट राजा बनने वाले हैं और सुबह सुबह ये नोटिस मिला वनवास, तो प्रभु श्री राम हमें सिखा रहे हैं एक उदाहरण से। उदाहरण ये दिया गया है कि इस भौतिक संसार में जब ये भौतिक सफलता मिलती है किसी को, तो एक जो चतुर मनुष्य होता है वो चौकन्ना हो जाता है। वो चौकन्ना कैसे हो जाता है? जैसे चतुर मछली चौकन्ना हो जाती है जब मछुआरा वो खाने का पदार्थ उस हुक में अटका कर फेंकता है, तो जो बुद्धिहीन मछली है वो बहुत ज्यादा खुश होती है, आनंदित होती है, अरे कुछ नया खाने को मिला। परंतु जो एक्सपीरियंस्ड अनुभवी मछली है वो जानती है, नहीं ये मेरे मृत्यु का हुक है। ये जैसे कि आजकल तो किसी को फांसी नहीं चढ़ाई जाती, परंतु पहले जब फांसी चढ़ाई जाती थी तो जिस दिन उस व्यक्ति को फांसी की सजा, अब फांसी चढ़ने वाला है वो व्यक्ति, उस दिन उसके लिए फीस्ट होता। अब लटकने वाला है, लटकने से पहले फीस्ट, बड़ा बड़ा चौरा फीस्ट उसके लिए, 56 भोग के समान। तो जैसे ही उसके सामने 56 भोग रख दिया जाता तो वो समझ जाता, वो कैदी, ये 56 भोग किसका संकेत दे रहा है? फांसी के फंदे का। तो एक एक उस भोग में, उस कटोरी में उसे क्या दिख रहा है? रबड़ी, पूड़ी, पनीर, ये सब नहीं, एक एक भोग में उसे दिख रहा है फांसी का फंदा। तो इस भौतिक संसार में जब 56 भोग हमारे सामने आता है तो क्या दिखना चाहिए? भगवान को भोग चढ़ावा यदि आए प्रसाद, तो प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करना चाहिए। परंतु हम स्थिति का मुआयना कर रहे हैं कि इस भौतिक संसार की स्थितियां ऐसी ही हैं। मैं परसों ही एयरपोर्ट से हमारे मंदिर हम आ रहे थे, तो हमारे मंदिर के एक भक्त हमें बता रहे थे बहुत ही दुखद घटना ये बैंगलोर में हुई। एक हमारे वहां के ब्रह्मचारी हैं, उनके भाई MBA किए और भी कुछ डिग्रियां हासिल की, परंतु नौकरी ठीक से कुछ मिली नहीं। जो भी नौकरी मिली वहां से निकाल दिया गया, और कर्जा, पैसे नहीं, बॉस ने दुत्कार कर निकाल दिया, भविष्य क्या है कुछ पता नहीं। तो इस व्यक्ति ने, इस स्थिति में इसने आत्महत्या करने का प्रयास किया, परंतु मर नहीं पाया, ठीक से उसका प्रयास ठीक नहीं था, तो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और फिर डांट फटकार मिली उसे, तो कुछ समय के लिए सुधर गया, परंतु फिर वही बातें मन में और अपने भविष्य पूरा अंधकार में देखते हुए ये व्यक्ति फिर अपने भाई को फोन करता है कि मैं रेलवे स्टेशन पर हूं और मैं मरने वाला हूं। तो ये भाई मलेश्वरम वहां पर रेलवे स्टेशन भागे, वहां पर भागकर वहां पर देखा कि अब तक इन्होंने कुछ किया नहीं था, तो पकड़कर फिर से घर लेकर गए। घर लेकर जाकर वहां पर समझाया, बंद तक कर दिया घर में। परंतु फिर दूसरे दिन वो उसी स्टेशन पर गए और वो ट्रेन में अंदर ट्रेन चली नहीं, खड़ी हुई थी ट्रेन, तो दूसरी तरफ उतरे पटरी पर और मन में केवल यही अब बातें। और ऐसा शाम अंधेरे का समय था तो पटरी में जाकर लेट गए, यही सब बातें सोच सोच कर पटरी पर लेट गए। और फिर वो ट्रेन जब चालू हुई तो इस व्यक्ति के दोनों हाथ और सर वो कट कर दूसरी पटरी पे गिरे। तो वहां पर जितने वो कुछ कई बार प्रोग्राम में भी आया करता था ये व्यक्ति, तो वहां का जो बेस के जो भी विद्यार्थी थे उनको बुलाया गया पहचानने के लिए। तो वो अब तक रात में सो नहीं पा रहे जिन्होंने ये दृश्य देखा। यह है भौतिक संसार। तो यदि प्रभु श्री राम अपने उदाहरण से हमें सिखा रहे हैं कि आज राज्य अभिषेक होने वाला है और आज ही वनवास, परंतु ये प्रभु श्री राम ने इस भौतिक संसार का जो रूप है वो दिखाया, उसके साथ भगवान क्या दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान फिर किसी पटरी के नीचे गए कि अब मैं भी जीकर क्या करूं। उन्होंने अपने उदाहरण से दिखाया कि ऐसी स्थिति में किस प्रकार की प्रतिक्रिया होनी चाहिए एक मनुष्य की, मनुष्य की भूमिका निभा रहे हैं। तो प्रभु श्री राम बिल्कुल भी प्रभावित नहीं। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम को यह समाचार मिला कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है तो तनिक भी उनके अंदर कोई बदलाव नहीं देखा गया। और जब यह बताया गया कि उन्हें अब वनवास जाना होगा तब भी कोई बदलाव नहीं। तो ये एक जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य है उसका लक्षण है, और ये हमें प्रभु श्री राम के उदाहरण से सीखना चाहिए। अब देखिए हमारे जीवन में कोई इतना बड़ा कहर तो कोई नहीं ढा रहा कि हमें घर निकाला देकर 14 वर्ष वनवास में रहना है, ऐसा तो कोई नहीं कर रहा। परंतु हमारे लिए जो भी इस प्रकार की स्थितियां वो 14 बरस के वनवास के समान ही होगी, क्योंकि हमारा स्तर भी उतना ही है, उतना ही झेल पाते हैं। तो भगवान हमें उतना ही देंगे जितना हम झेल पाएंगे, परंतु उसके साथ साथ भगवान सिखा रहे हैं कि कैसे झेलना है, जैसे भगवान यहां पर अपने उदाहरण से बता रहे हैं। तो अब सबसे पहले माता कौशल्या के भवन में जाते हैं भगवान इस समाचार को अपनी माता को सुनाने के लिए। तो माता कौशल्या तो सुनी है कि आज राज्याभिषेक है। अब सुमंत्र जी ने जब प्रभु श्री राम को बुलाया तो भगवान ने स्नान नहीं किया था, केवल दातुन किए थे, तो वैसे ही बिना स्नान किए वो गए क्योंकि पिताश्री बुला रहे हैं, तो बिना स्नान किए गए थे। तो अब आते वक्त माता कौशल्या के भवन में भी वैसे ही थे वो। तो माता कौशल्या ने देखा कि सुबह सुबह बिना स्नान किए कैसे घूम रहे हो। इससे समझ में आता है कि वैदिक संस्कृति क्या है कि तुरंत बिना स्नान किए नहीं घूमना चाहिए। तुरंत माता कौशल्या कही कि बेटे स्नान करो और आज तुम्हारा राज तिलक है तो मुंह मीठा करो। कुछ खा लो, मुंह मीठा कर, सबसे पहले कुछ मुंह मीठा करो, क्योंकि मिठाई ये सत्वगुण में होती है। तो इसलिए माता कौशल्या ये प्रभु श्री राम को बतला रही है कि सुबह सुबह सत्वगुण में सत्वगुण के कार्य करो। मैं देख रहा हूं कि इसे बहुत ध्यान से कई लोग सुन रहे हैं, परंतु उसके पहले नहाने का भी नियम बताया। तो अब माता कौशल्या प्रभु श्री राम की तरफ देखते हुए, अब माता कौशल्या जानती थी कि मेरा ये जो राम है ये बहुत गंभीर और संयमी है, और वो जानती थी कि ये ऐसे नहीं कूदते फांदते आएगा, मम्मी मम्मी आज मेरा राज्याभिषेक है। बहुत गंभीर है मेरा पुत्र, तो ये बाहर से दिखाएगा नहीं। हालांकि भगवान तो बिल्कुल नहीं दिखा रहे थे, तो माता कौशल्या समझ नहीं पाई कि क्या समाचार लेके मेरा पुत्र आया है। माता कौशल्या इतना ही जानी कि मेरा आशीर्वाद लेने आया होगा। बैठो बैठो, बिठाया और पूछा कि समय क्या है, कौन सा समय निर्धारित किया है राज तिलक का। दिन तो पता था आज का दिन है, परंतु समय माता कौशल्या को नहीं पता था। तो माता कौशल्या पूछ रही थी कौन सा समय निर्धारित किया है। तब देखिए प्रभु श्री राम जानते हैं कि ये मैं समाचार कैसे सुनाऊं। अब उस स्थिति पर यदि हम जाएं, त्रेता युग में माता कौशल्या के भवन में प्रभु श्री राम कैसे माता कौशल्या को ये समाचार दें, यदि हम उस स्थिति में हो तो हम कैसे इस समाचार को सुनाएं, वो भी अपने ही माता को जो इतनी प्रेम करती है। परंतु प्रभु श्री राम के लिए कोई भी स्थिति दुष्कर स्थिति नहीं हो सकती। तब देखिए प्रभु श्री राम ने कैसे माता कौशल्या को समाचार सुनाया। प्रभु श्री राम कहे, माते बहुत शुभ समाचार है। उन्होंने कहा, मैं जानती हूं, सब पूरा अयोध्या जानता है। नहीं नहीं, वो समाचार तो पुराना, अरे वो तो सुबह के न्यूज़पेपर में था, अब मिड डे में जो आया है। वो कह रहे थे कि जो ताजा समाचार इतना सुखद है कि मैं फूला नहीं समा रहा। तो माता कौशल्या फिर पूछने लगी, अरे ये ताजा समाचार क्या है। वो कहे, ताजा समाचार ये है कि महाराज दशरथ ने मुझे वन का राजा बनाया। आज वन विभाग का मंत्री। तो माता कौशल्या समझ नहीं पाई, ये क्या हुआ, वन का राजा। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि ये देखो, अयोध्या नगरी तो छोटी सी है, ये कौशल देश इतना सा है, ये वन कितना बड़ा होता है। और मेरी भी इतने समय से इच्छा थी वन का भ्रमण करने के लिए, तो मैं वन का राजा बनूंगा 14 वर्ष तक, केवल 4 और 10, ऐसे कहा उन्होंने। पहले कहा 4, ऐसा नहीं कहा 10 और 4 या 11 और 3, ऐसा नहीं, या 12 और 2, 4 और 10, बस 4 और उसके बाद 10। तो हम भी कई बार जब नए नए व्यक्ति आते हैं पूछते हैं ना, कितना माला करना है, बस 6 और 10। तो पहले जब छह सुनाई देता है, अच्छे यहां, उसके बाद दस, और फिर दस हो जाए तो और छह और दस। तो यहां पर प्रभु श्री राम ये समाचार माता कौशल्या को ऐसे सुनाए, परंतु कब तक वो छिपाते। तो माता कौशल्या समझ गई कि यहां पर ये कुछ ठीक नहीं हो रहा, ये क्या बोल रहा है मेरा पुत्र। तब फिर सुमंत्री जी का पुत्र वो भगवान के साथ आया हुआ था, तो उसने सब माता कौशल्या को बताया। तब माता कौशल्या वहां पर मूर्छित होकर गिर पड़ी ये सुनकर। तो प्रभु श्री राम ने संभाला अपनी माता को और फिर होश में लाया और कहा कि आपको तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए और मेरे सौभाग्य की सराहना करनी चाहिए कि मुझे अपने पिता और अपनी मां कैकेयी। अब यहां पर देखिए, प्रभु श्री राम कौशल्या को बड़ी मां कहते थे और कैकेयी को मां कहते थे और सुमित्रा को छोटी मां कहते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो मां है और पिता दशरथ, इनके आदेश का पालन, इनके आदेश को पालन करने का आज अवसर मिला है मुझे, और वो भी ऐसा आदेश। तो किसी पुत्र के जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य क्या होता है? अपने माता पिता के आदेशों का पालन करें। हमारे कुछ ब्रह्मचारी हंस रहे हैं। एक बार जयद्वेत महाराज को पूना में प्रश्न पूछा गया था कि एक ब्रह्मचारी ने पूछा कि हम कैसे समझे माता पिता की सेवा। तो उन्होंने उत्तर में कहा कि हम सब के असली माता पिता कौन है? राधा और कृष्ण। They are our oldest parent. तो प्रश्न ये था, when parents become old, so how to take care? उन्होंने उत्तर में दिया, the oldest parent is Radha and Krishna. तो यहां पर प्रभु श्री राम अब माता कौशल्या को कह रहे हैं, और फिर वो कहे कि देखो, मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं और मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं ये जो अपना रघुकुल है इसका नाम मैं और बढ़ाऊं। ये नहीं कि इस रघुकुल की नाक कटाऊं मैं। तो माता कौशल्या को जब ये पता लगा कि ये कैकेयी का प्रस्ताव था तो कुछ नहीं कह सकी। वो कहने लगी कि यदि महाराज दशरथ का यह प्रस्ताव होता तो मैं महाराज दशरथ को रोक देती, परंतु कैकेयी को मैं नहीं रोक सकती। और माता कौशल्या फिर अपने पति और अपने पुत्र इन दोनों के धर्म के बीच में अटकी हुई थी। तो भगवान ने कहा कि देखो, महाराज दशरथ आपके पति हैं, तो एक पत्नी होने के नाते आपका भी कर्तव्य है कि आप आपके पति का नाम बनाए रखें, और मैं, मेरा भी यह धर्म बनता है कि मैं अपने पिता के नाम को बनाए रखूं, और केवल बनाए नहीं रखूं, उसे और बढ़ाऊं। तो उदाहरण दिया गया है कि माता कौशल्या उस सांप के समान थी। इस सांप का उदाहरण दिया गया है कि सांप जब किसी छुछुंदर को खाने जाता है तो यदि वो छुछुंदर को निगल ले तो सांप मर जाता है, और यदि उस छुछुंदर को छोड़ दे तो सांप अंधा हो जाता है। हमने तो देखा नहीं, सुना है लोक की कथा है। तो सांप को निगलने से मरता है, छोड़ने से अंधा होता है। तो छछुंदर आ जाए तो सांप किसी भी दृष्टिकोण से अब खतरे में। तो वैसे माता कौशल्या अब अनुमति दे तो ठीक नहीं, और यदि ये कहे कि न मत जाओ तो फिर पति धर्म का पालन नहीं कर पा रही। यहां पुत्र धर्म और पति धर्म, इन दोनों के बीच में माता कौशल्या तो कुछ नहीं कह पा रही। तो माता कौशल्या ने कहा कि बस अब मेरी एक ही इच्छा है, या एक ही मैं प्रार्थना करूंगी कि जब तुमने निर्णय ले लिया है, तुम्हारे पिता ने निर्णय ले लिया है, तो अब मैं एक अबला स्त्री, मैं क्या बीच में किसको रोकूं। तो आज से यही प्रार्थना मेरी रहेगी कि जो वन देव हैं वो तुम्हारे पिता बने और वन देवी तुम्हारी माता, ये तुम्हारे माता पिता बने। और वहां पर जितने सारे ऋषिगण मुनि हो वो तुम्हारी रक्षा करें जैसे पलक आंखों की रक्षा करते हैं। अब माता कौशल्या इस स्थिति में थी, उसी समय सीता देवी ने प्रवेश किया। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है कि प्रभु श्री राम अपने परिवार के हर एक सदस्य से कैसे जूझ रहे हैं ये बताने के लिए कि मुझे वनवास मिला है और मुझे जाना ही है। कितना कठिन था उन्हें इन सब के प्रेम के बंधन से बाहर निकलकर जाना। तो अब यहां पर माता कौशल्या, अब सीता देवी ने प्रवेश किया तो उन्होंने सब सुन लिया माता सीता ने। तो वो प्रवेश की और वो इस प्रकार से अपनी छवि रखी थी कि ठीक है आपने जो भी निर्णय लिया हो मुझे तो आपके साथ जाना है। इस प्रकार से उन्होंने प्रवेश किया। तो माता कौशल्या अब सीता देवी की तरफ देखते हुए, कि सीता देवी के मनोभाव को समझते हुए माता कौशल्या तुरंत प्रभु श्री राम से कही कि इसे बिल्कुल मत लेकर जाना। पहले ही बोल दी यदि इसे ले जाओगे तो मेरे प्राण यहीं पे खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सीता की तरफ देखते हुए माता कौशल्या कहती है कि ये किसी आसन या पलंग या पीठ इससे कभी नीचे उतरी नहीं है, इसके चरण कभी धरती को स्पर्श नहीं किए, ये क्या वन में रहेगी। ये सीता वानर के चित्र को, दीवार पर वानर के चित्र को देखकर घबरा जाती है। और एक बार हुआ था ऐसे कि माता सीता एक वानर के, बंदर के चित्र को, दीवार पर चित्र बनाया हुआ था बंदर का, केवल चित्र को देखकर घबरा गई सीता देवी। सोचिए आगे चलकर तो पूरी वानर सेना के बीच में रहना था, और वो भी केवल चित्र नहीं थे, और वानरों के श्रेष्ठ हनुमान जी वो संदेशा लेकर आए थे। तो माता कौशल्या कह रही है कि अरे मैंने इस सीता को कभी बाती, जो दीप जलता है घर में, वो दीप की बाती बुझाने के लिए भी नहीं कहा कभी। देखिए यहां पर रामायण में सिखाया जा रहा है कि सास और बहू का रिश्ता कैसा होना चाहिए। सब कुछ सीखने मिलता है कि पिता पुत्र का, माता पुत्र का, सास बहू का रिश्ता, कि ऐसी सास होनी चाहिए कौशल्या माता जैसी कि वो सीता देवी को, और आजकल तो डर के मारे सास नहीं कहती कि यदि वो बाती बुझाने के लिए कह दूं तो मुझे ही जला देगी। कि तुम्हारी बत्ती बंद करती हूं। जैसे हम अमृतसर से आ रहे थे तो एक व्यक्ति जो मंदिर में आना शुरू किए हैं तो कह रहे थे, वो अपने ससुराल दिल्ली जा रहे थे तो बोल रहे थे कि एक जो दामाद होता है जमाई, वो जब अपने ससुराल जाता है तो किस प्रकार का मनोभाव होता है उसका, विशेष रूप से सास को लेकर। तो उदाहरण के तौर पर वो पूछ रहा था कि कई बार हमारे मन में सुख और दुख ये दोनों भावनाएं एक साथ कई बार होती हैं। जैसे कि आप प्रसाद के लिए बैठे हो और आपने तकरीबन प्रसाद पूरा ले लिया है, पेट टंकी फुल हो गई है, और उसके पश्चात फिर कोई स्वीट राइस लेकर आता है तो मन में दो प्रकार के विचार होते हैं कि स्वीट राइस आया है परंतु जगह नहीं है, तो खुशी भी होती है और गम भी होता है, कभी खुशी कभी गम। हालांकि इस भौतिक संसार में अक्सर गम ही गम होता है। तो वो बता रहे थे कि ये इसे कहते हैं अंग्रेजी में मिक्स्ड फीलिंग्स, कि हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस का मिक्स्ड फीलिंग्स। बोल रहे थे कि एक उदाहरण लीजिए कि मानो किसी व्यक्ति की सास बालकनी से कूदी, तो वो जो दामाद बहुत खुश होता है पहले, परंतु फिर देखता है कि उसी की मर्सिडीज गाड़ी पर गिरी तो कहता है दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फीलिंग्स व्हेन योर मदर इन लॉ जंप्स फ्रॉम द बालकनी बट लैंड्स ऑन योर मर्सिडीज। यहां पर सीता देवी को देखते हुए अब माता कौशल्या वो उनका मनोभाव देखते हुए कहती है कि रामचंद्र जी को बोल रही है, प्रभु श्री राम को कहती है कि देखो तुम बिल्कुल इस निर्णय पर मत आना कि इसे ले जाओ। तब प्रभु श्री राम आज तक सीता देवी के साथ वार्ता अपनी माता के सामने नहीं किया था। ये संस्कार देखिए कि अपनी ही पत्नी इसके साथ अपनी मां के सामने कभी प्रभु श्री राम बोले नहीं थे। पहली दफा अब ये क्योंकि थोड़ी आपातकालीन स्थिति है इसलिए पहली दफा बोलना पड़ रहा है प्रभु श्री राम को अपनी पत्नी के साथ अपनी माता के सामने। देखिए स्टैंडर्ड भगवान क्या सेट किए थे, और यदि आज का स्टैंडर्ड देखें तो क्या कहां से शुरू करें कहां अंत हो। तो वो कहते हैं कि एक पुत्र वधु जो होती है उसका सबसे पहला कर्तव्य है कि वो जो उनके पति के मां बाप हैं उनकी सेवा करें। तो प्रभु श्री राम ने कहा, वो कहते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी सास की सेवा करो। प्रभु श्री राम ने यह नहीं कहा कि मेरी मां की सेवा करो, नहीं, उन्होंने कहा कि अपने सास की सेवा करो। बहुत ध्यान से शब्द इस्तेमाल कर रहे थे भगवान, कहीं पर भी ये नहीं कि अपना अपना, ये मेरी मां है, मेरी मां की सेवा करना, मैं जा रहा हूं। तो सर्वोच्च धर्म एक पुत्र वधु का है ये बता रहे हैं प्रभु श्री राम। और प्रभु श्री राम ने ये भी कह दिया मानो फिर माता सीता ये पूछे तो फिर पति का धर्म क्या है अपनी पत्नी की तरफ। तो प्रभु श्री राम कहते हैं ये मत समझना कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं ले जा रहा कि तुम मुझ पर भार होगी, नहीं। बहुत से कारण आगे प्रभु श्री राम देने वाले हैं, परंतु शुरुआत इससे कर रहे हैं। और प्रभु श्री राम ने माता सीता को वो अक्सर प्रिय कहकर पुकारते थे, परंतु इस समय इस स्थिति में वो राजकुमारी बोल रहे हैं। पहली बार सीता को राजकुमारी कहकर उल्लेख किया। क्यों? क्योंकि तुम एक राजकुमारी हो, एक राजा की पुत्री हो, और वनवास, ये मेल ठीक नहीं। राजकुमारी और वनवास ये मेल ठीक नहीं, वन में रहना ही ठीक नहीं। तो अब वो कहते हैं माता सीता को कि देखो तुम हट मत करो, क्योंकि हट करने से बहुत से लोग पछताए हैं। अब इतिहास कोट कर रहे हैं प्रभु श्री राम, कहते हैं कि महाराज नहुष और एक महाराज हुए गालव, ये महाराज नहुष और गालव ये हट के वजह से बहुत पछताए। महाराज नहुष की कथा है भागवत में कि महाराज नहुष ये इंद्र पत्नी के प्रति आकर्षित हुए, सची देवी। तो ये सची देवी इंद्र का पद चाहते थे, सची देवी को चाहते थे। तो ये महाराज नहुष सप्त ऋषि को कहे, सात ऋषि जो प्रमुख सप्त ऋषि हैं उनको कहे कि मेरी पालकी को तुरंत इंद्र के लोक में ले चलो। तो सभी समझाने लगे कि यह ठीक नहीं महाराज, आप जो कर रहे हो यह धर्म के विरुद्ध है। परंतु जबरदस्ती हट कर इन सप्त ऋषि को लगाया इनकी पालकी उठाने के लिए। सोचिए, तो ये अब महाराज का आदेश है तो ये उठाए, और ये जा रहे थे उठाकर ले जा रहे थे महाराज नहुष को। तो महाराज नहुष अब अपने पैर से मार मार कर इन सप्त ऋषि को कहते हैं जल्दी चलो, क्या धीरे धीरे चल रहे हो। सर्प सर्प, संस्कृत में सर्प का अर्थ है जल्दी जल्दी चलो। तो अगस्त मुनि वो पलटे और उन्होंने श्राप दिया, तुम सर्प सर्प बोलते हो, तुम सर्प बन जाओ। तो महाराज नहुष फिर सर्प बन गए, हो गया, मिल गया इंद्रपद, मिल गई सच्ची देवी, अब जाओ बिल में रहो, किसी के बिल भरते रहो। तो अब ये सोचिए, इस स्थिति में प्रभु श्री राम इतिहास की एक कहानी सुना रहे हैं माता सीता को। यहां पर एक छोटा सा लेक्चर हो रहा है। अब इससे यह समझ में आता है कि पहले के जमाने में लोग इतिहास को कोट किया करते थे कि पहले ऐसे हुआ था तो उससे सीख लेकर संभल जाओ। तो ये इतिहास सुनाया कि हट मत करो। अब वन का विवरण करते हैं सीता के सामने प्रभु श्री राम कि थोड़ा भय उत्पन्न करूं, सीता के मन में भय उत्पन्न करूं वन के प्रति, जंगल के प्रति। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि वन का एक और नाम है भयंकर। भयंकर का अर्थ क्या होता है? भयम करोति इति भयंकर, जो कि भय उत्पन्न करे। तो वन में भय उत्पन्न होता है, इसलिए वन का एक और नाम है भयंकर। तो ये भय किस प्रकार का? तो रामचंद्र जी कहे कि सबसे पहले तो वन भरा हुआ है ऐसे खूंखार प्राणियों से। ऐसे ऐसे खूंखार प्राणी हैं जो सीता तुमने देखे भी नहीं होंगे, कभी कल्पना भी नहीं की होगी, इस प्रकार के भयंकर प्राणी वन में होते हैं। एक भक्त बता रहे थे कि बिहार के एक जंगल में एक बहुत नरभक्षी बाघ वो गांव के निकट पहुंच गया और वो वहां के गांव के बच्चों को खाना शुरू कर दिया। बाघ बड़ा खूंखार बाघ था। तो अब ये गांव वालों ने निर्णय लिया कि ये बाघ को तो मार डालना चाहिए, ये हमारे सब यहां पर इंसानों को खाना शुरू कर दिया है इसने। तो बहुत खूंखार था ये बाघ, बहुत बड़ा महाकाय, बहुत खूंखार। तो एक मंच बनाया गया जहां पर ये घूमता फिरता उस जंगल में। तो मंच बनाया गया और राइफल वो गांव में लाई गई, एक ही राइफल लाई गई इस बाघ को मारने के लिए। तो अब जो वो एक व्यक्ति जो जानता था कि राइफल कैसी चलानी चाहिए, जो थोड़ा शिकार इत्यादि जानता था, उसे नियुक्त किया गया। परंतु वहां का जो मुखिया था उसने कहा, नहीं मैं मारूंगा, मैं मुखिया हूं, मैं मारूंगा। तो इस व्यक्ति ने कहा कि मुखिया जी देखिए ये बाघ बहुत खूंखार है, ये अरे तो राइफल है ना, तो खूंखार तो क्या, बताओ कहां है उसका टेटवा, कहां से दबाना है, कहां उसको कैसे, बताओ गोली कहां से चलती। केवल बताने से नहीं होता है, और यहां तो मैं बता दूं लेकिन सामने जब बाघ आएगा तो वो अलग कहानी होती है। फिर उसने कहा तुम हटो, लाओ मंच पर, वहां पर चारों तरफ से मंच पर राइफल लेकर तैयार मुखिया जी। तो अब एक दो घंटे बीत गए, बाघ यहां वहां कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर बाद में कुछ दो घंटे के पश्चात वो बाघ उस तरफ से गुजरते हुए आया। तो मुखिया जी को फिर चौकन्ना किया कि ये सरसराहट उस बाघ की है, वो उस झाड़ी में है। हाँ तो झाड़ी में है तो क्या, तो हूं ना मैं भी तैयार है, राइफल है ना, भरी है ना, गोली है ना अंदर। तो वो बाघ अब वो बाहर आया और इतना महाकाय वो बाघ, उसने केवल जम्हाई ली। अब यदि आपने देखा हो, देखा है बाघ को जम्हाई लेते, हमने बहुत निकट से देखा है बाघ को। तो बाघ जब जम्हाई लेता है तो उसके नोकीले सारे दांत ये सब दिखाई देते। तो उसने जब जम्हाई ली तो पूरा अंदर का अल्टर दिखा, उसके बड़े बड़े दांत और ये सब। अब ये मुखिया जी उसकी जम्हाई देखकर अब पूरी धोती गंदी हुई और वो राइफल वहीं पर नीचे गिरी और वो बाघ अपना जम्हाई लेकर निकल पड़ा। ये लो हो गए मिस्टर वाघ मारे। मेरे ख्याल से इसीलिए नाम मिलता है, वाघ को मारते हैं। तो यहां पर प्रभु श्री राम माता सीता को बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे खूंखार प्राणी वन में होते हैं। तो पहले प्राणियों का भय सीता देवी के अंदर डालना चाहा, फिर कहे कि केवल प्राणी नहीं नर भक्षी वहां के कुछ ऐसे जाति के लोग होते हैं, जंगली जाति के नरभक्षी होते हैं। तो ये बड़े बड़े जो कठोर सुदृढ़ शरीर वाले उनको मारकर पकाकर खाते हैं। तो तुम इतनी मृदु कोमल, तुम एक नारी एक स्त्री, तो तुम्हें तो पकाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको बिना पकाए खाएंगे तुम्हें ऐसे ही सलाद के रूप में। नरभक्षी ये जंगली जाति के लोग। और फिर प्रभु श्री राम कहे कि तुम्हारे चरण कभी धरती पर लगे नहीं, तो वहां पर कोई पात्रण लेकर नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि चप्पल जूते लेकर जाएंगे, और एक जो भी पहनकर जाओगी एक महीने में वो तो टूटने वाली है सारी चप्पल तुम्हारी। उसके पश्चात वो ऐसी धरती पर चलना होगा जहां पर कंकड़ कांटे ये सब कुछ होंगे। भोजन, कोई भोजन का कोई समय नहीं और क्या मिलेगा कुछ ठिकाना नहीं। ऐसा नहीं कि वहां जाने के बाद फिर भूख लगी तो चलो स्टोर से कुछ खरीद कर लाते हैं, कुछ नहीं। जो मिला कंदमूल यदि मिला, कुछ समय मिला तो ठीक, नहीं तो कुछ नहीं खाने के लिए, भोजन का कोई ठिकाना नहीं। अच्छा, सोगी कहां पर? ऐसा नहीं कि यहां से तुम्हारे जो ये जो पलंग है, जो शैया है, ये यहां से जाएगा, नहीं कुछ नहीं। वहां पर ऐसे ही पत्तों की शैया पर सोना होगा। और ये वस्त्र, वस्त्र क्या धारण करने होंगे? वलकल, वलकल वसन। वलकल किसे कहते हैं? ये जो छाल होती है पेड़ की, वो छाल पहननी होगी। और वन में विशेष रूप से ऐसी कड़ी धूप पड़ती है, प्रभु श्री राम कहे कि कई बार जो सूर्य का प्रकाश है वो स्फटिक, स्फटिक जो पत्थर होता है उस पर गिरकर आंखों में और पूरे शरीर पर जब गिरता है तो ऐसे झुसलाती है वो धूप, जलाती है वो धूप। तो ये है वन। ये संक्षिप्त रूप में मैं विवरण दे रहा हूं तुम्हें वन का। ये कोई खाने की बात नहीं है वन में जाना। तब देखिए सीता देवी का उत्तर। सीता देवी कहती हैं कि आपके बिना इंद्र का पद या इंद्र का लोक भी मेरे लिए नरक के समान है। ये अयोध्या तो छोड़ दीजिए, आप यहां पर नहीं तो ये अयोध्या भी नरक के समान मेरे लिए। तो अब वन में और नरक में ज्यादा बदतर क्या है? नरक। तो सीता देवी का उत्तर यहां से शुरू हुआ। वो भी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, तो वो भी इस प्रकार से उत्तर दे रही हैं कि प्रभु श्री राम को मना कर ही रहेंगी। फिर सीता देवी आगे कहती हैं कि आप मुझे बोलते हो कि मैं अपने सास की सेवा करूं, ससुर की सेवा करूं और सारे जो परिवार वाले यहां पर रहने वाले उनकी सेवा करूं, परंतु एक पत्नी के लिए ये सास और ससुर और जो भी देवर और जो भी है, ये सब जब तक पति है तब तक इनका संबंध है, पति नहीं तो ये सब कुछ संबंध नहीं इनका। जैसे कि एक जब वधु जाती है विवाह कर तो विवाह पति से की है और पति के वजह से फिर सास और ससुर और फिर देवर और जो भी इत्यादि रिश्ते बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब पति ही नहीं तो फिर ये सास और ससुर ये किस काम के। अब प्रभु श्री राम बीच में कहे कि देखो, मैंने अपने पिता को ये वचन दिया है 14 वर्ष का, ये तुम्हारे लिए लागू थोड़ी है। तो माता सीता कहती हैं कि आपने आपके पिता को 14 वर्ष का वचन दिया है, मैंने अपने पिता को जीवन भर का वचन दिया है, किसका वचन ज्यादा बड़ा है? तो प्रभु श्री राम कहे, अरे मैंने आप तुम्हारे पिता को वचन दिया कि मैं तुम्हें हर समय सुख सुविधा में रखूंगा। तो माता सीता कहती है, तो मैंने भी अपने पिता को वचन दिया था कि मैं हर स्थिति में अपने पति के साथ रहूंगी। और जहां तक ये जो वन का विवरण आप कर रहे हैं, तो अब देखिए सीता देवी कैसे देखती हैं उसी वन को, जिस वन को हमने अब प्रभु श्री राम के आंखों से देखा, अब सीता देवी उनकी आंखों से इस वन को देखते हैं। तो सीता देवी कहती हैं कि आप यदि उस वन में जा रहे हो तो मेरे लिए वो सारे वन के प्राणी मेरे रिश्तेदार हुए। क्योंकि आप वन में जाओगे तो आप वनचारी बनोगे और ये सारे प्राणी आप के संबंध में होंगे, तो आपके साथ यदि मैं जाऊं तो ये सारे प्राणी वहां के मेरे रिश्तेदार हो, तो वो मेरे रिश्तेदार बनेंगे तब। फिर वो कहती हैं कि आपके साथ वो वलकल मेरे लिए रेशमी साड़ी के समान होगी यदि आप साथ में हो, और यदि आप साथ में नहीं हो तो ये परिवार वाले सारे प्राणी के समान होंगे और रेशमी साड़ी वलकल के समान आपके बिना, आपके साथ प्राणी रिश्तेदार के समान, वलकल रेशमी साड़ी के समान, और आपके साथ कंदमूल भी अमृत आहार के समान होगा, और आपके बिना अमृत आहार भी कंदमूल के समान। घास का आसन इंद्र के आसन के समान होगा यदि आप साथ में होंगे, और कड़ी धूप की आप बात करते हो, अरे आपके मुख चंद्र, आपके मुख को चंद्र की उपमा दी गई है, और चंद्र से शीतल किरण बाहर आती है, तो जब भी कड़ी धूप होगी तो मैं आपके मुख चंद्र को देखूंगी। बस, तो कौन सी कड़ी धूप मुझ पर आ सकती है यदि मैं आपके मुख चंद्र को देखती रहूंगी। और आप कहते हो कि वहां जंगली जाति के नर भक्षी लोग होते हैं वन में, अरे तो आप सूर्यवंशी हो, आप एक सिंह के समान हो, और सिंह की पत्नी को क्या खरगोश मृग इत्यादि कुछ कर पाएंगे। तो सीता देवी उदाहरण दे रही हैं कि जब सिंह की पत्नी मिसेज सिंह जब वो चलती है तो क्या उसे खरगोश से डर लगता है। तो वो सीता देवी कहती हैं कि मैं आपकी पत्नी हूं तो आपके बगल में मैं चलूंगी, तो आप एक दृष्टिकोण से आप किस काम के, आप रक्षा नहीं करेंगे मेरी, और ये लोग क्या कर लेंगे सब। तो माता कौशल्या वो सीता देवी से कहती हैं, वो सीता देवी की परीक्षा ले रही हैं माता कौशल्या, सीता देवी से कहती हैं कि देखो सीते, अक्सर देखा जाता है कि जब पति की विकट परिस्थिति होती है तो पत्नी छोड़ देती है, उस पति को पत्नी छोड़ देती है विकट परिस्थिति में आते ही। या कई बार, जैसे कि एक बार एक पति, उसे कोई जानलेवा बीमारी हुई और अस्पताल में वो एडमिट था, तो उसकी पत्नी बगल में, तो अपनी पत्नी को पति के हाथ पकड़े हुए हो, तो पति अपनी पत्नी को कहता है कि मैं अपने पूरे जीवन में देखूं तो हर समय तुम मेरे बगल में थी, जैसे आज खड़ी हो। याद है जब 15 वर्ष पहले हमें घर से निकाल दिया गया था, भाड़ा नहीं भरा था, तो घर से निकाल दिया गया था तब भी तुम मेरे बगल में थी। उसके पश्चात जब मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, कुछ पैसे नहीं थे, भिखारी के रूप में जी रहे थे जीवन, तब भी तुम मेरे बगल में थी। याद है 2 वर्ष पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब भी तुम मेरे बगल में इसी प्रकार से थी। आज ये जानलेवा बीमारी मुझे हुई है, आज भी तुम मेरे बगल में हो। तो मेरे तुम्हारे साथ रहने का निष्कर्ष यही है कि जब भी तुम मेरे बगल में हुई हो, ये सब कुछ हुआ। परंतु यहां पर माता कौशल्या ये कह रही है कि अक्सर सीता को कहते हैं कि अक्सर देखा गया है कि जब पति विकट परिस्थिति में होता है तो पत्नी छोड़ देती है। कैसे छोड़ देती है, उदाहरण के साथ माता कौशल्या बता रही, जैसे जल मछली को छोड़ देता है। जब मछुआरा जाल फेंकता है तो वो जल जो मछली के साथ जीवन भर रहा, जैसे ही जाल को मछुआरा ऊपर खींचता है, मछली उसमें अटकी हुई है, तो वो जो जल है वो जल क्या करता है, क्या वो मछली के साथ जाल में आता है? नहीं, वो सबसे पहले बाहर निकलता है। वो जाल से बाहर निकलता है और मछली तड़पती हुई उस जल को पुकारती है, अरे तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, जीवन भर तुम्हारे साथ में रही। तो जल क्या कहता है, अरे कृष्णा जाओ। तो माता कौशल्या कहती है कि जैसे जल मछली का साथ छोड़ देता है जब मछली विकट परिस्थिति में आती है, उसी प्रकार से देखा गया है कि पत्नी पति का साथ छोड़ देती है जब पति किसी विकट परिस्थिति में आता है। तो अब सीता देवी, माता कौशल्या, थोड़ा सीता देवी को अब क्रोध सा आया, परंतु यह मत समझना कि अब ये सास के ऊपर क्रोध कर रही है, सास बहू का कुछ उस प्रकार का, उस प्रकार की कहानी नहीं। परंतु माता सीता बता रही है, वो कहती है कि जैसे चंद्रमा की रोशनी चंद्रमा से कभी अलग नहीं हो सकती, एक वीणा, वीणा आपने देखा जो वाद्य, वीणा की जो तारे हैं वो वीणा से अलग नहीं हो सकती, जैसे एक रथ का जो पहिया होता है वो रथ से अलग नहीं होता, और जैसे नदी पानी से अलग नहीं हो सकती। ये उदाहरण दिया माता सीता ने कि बिना चांदनी के चांद क्या, और बिना तार के वीणा क्या, बिना पहिए के रथ क्या, और बिना पानी के नदी क्या। तो ये उदाहरण समझने लायक है, वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि इसमें ये हम समझ सकते हैं कि यहां पर पत्नी की तुलना की जा रही है। जैसे वीणा और वीणा के तारों को यदि लें तो जो वीणा है जिस पर तार बांधा जाता है, तो तार की तुलना पत्नी से की गई है और उस वीणा की तुलना पति से की गई। तो अब जब वीणा बजती है तो तारों की वजह से वीणा बज रही है कि नहीं, तो गुणगान उन तारों का होता है, और यदि रथ और चक्के या पहिए का उदाहरण लें तो जो पहिया है वो घूमता है, वो उबड़ खाबड़ जमीन पर यहां वहां घूमता है, वो कभी कीचड़ में, कभी पत्थर पे, कभी कंकड़ पर। तो उस चक्के की तुलना पति से की जा रही कि पति धूप दौड़ धूप कर कर सब कुछ काम करता है, और उस रथ की तुलना पत्नी से की जाती है। जैसे कि तार वो बांधा जाता है उस वीणा के ऊपर, तो वो पूरा उसका जो टेंशन है वो वीणा लेता है। और जो चंद्रमा की रोशनी है और चंद्रमा, तो जो चंद्रमा है उसकी तुलना उस पत्नी से की जा रही है, और जो रोशनी फैलती है सब जगह उसकी तुलना पति से की जाती है। तो यहां पर ये उदाहरण माता सीता दे रही हैं कि आप अकेले जाओगे तो कोई आपका गुणगान नहीं होने वाला, जैसे बिना पानी के नदी का कौन गुण, कौन जाएगा उस नदी के तट पर जहां पर पानी नहीं है, कौन उस चंद्रमा का गुणगान करेगा जहां पर रोशनी नहीं है, कौन उस वीणा को बजाएगा जिसमें तार ही नहीं है, कौन उस रथ में बैठेगा जिसके पहिया ही नहीं है। तो इसीलिए ये जैसे अलग नहीं किए जा सकते, वैसे ही हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। अब यहां पर हमें यह समझना है कि माता सीता जीव की भूमिका निभा रही है। तो जीव का विवाह हुआ है भगवान से, जैसे माता सीता का विवाह हुआ भगवान से। और माता सीता का विवाह भगवान से हुआ कैसे? स्वयंवर। माता सीता ने अपने स्वयं की इच्छा से यह वर प्राप्त किया। उसी प्रकार से जीव जब स्वयं की इच्छा से भगवान का चयन करता है तब भगवान विवाह करते हैं। तो माता सीता जीव की भूमिका निभा रही है, तो जीव का विवाह जब भगवान से होता है तो भगवान जीव को उस परीक्षा की स्थिति में डालते हैं कि क्या तुम मेरे साथ ऐश्वर्य में रहोगे या वन में भी रहने के लिए तैयार हो। तो जीव की प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए माता सीता सिखा रही है कि जितना भी ऐश्वर्य आपके बिना नरक के समान, ये रेशमी साड़ी वलकल के समान और उल्टा वलकल रेशमी साड़ी के समान। तो हमारे जीवन में भी हम भगवान कृष्ण की या रामचंद्र जी की भक्ति हर एक स्थिति में करने के लिए तैयार हैं या हम केवल अयोध्या में प्रभु श्री राम की भक्ति करना चाहते हैं, परंतु यदि उनको वनवास मिला तो क्या हम नासिक में भी उनकी भक्ति करने के लिए तैयार हैं? हम लोग सब कहेंगे अरे कर तो रहे हैं और क्या। परंतु वन का अर्थ है कठिन परिस्थिति में। क्या हम कठिन परिस्थिति में भी उनके दास बनने के लिए तैयार हैं? ये माता सीता यहां पर सिखा रही है। अब माता सीता का उदाहरण बड़े बड़े आचार्यों ने दिया है कि माता सीता को कौशल्या ने, प्रभु श्री राम ने, महाराज दशरथ ने, इन सब ने मना किया माता सीता को। तो अब देखिए यहां पर माता सीता का दृढ़ निश्चय बताया गया है कि उनका दृढ़ निश्चय इतना था कि अपने अपनी सास, अपने ससुर, अपने पति, इन सब का मानो आदेश का उल्लंघन किया। एक दृष्टिकोण से उनके आदेश का उल्लंघन किया और साथ में गई सीता, परंतु साथ में इसलिए नहीं गई कि बस पति के साथ रहूंगी तो सारी सुविधाएं मिलेंगी। नहीं, भगवान ने जो कहा, जैसे एक वनचारी का जीवन होता है उसी प्रकार का जीवन माता सीता ने बिताया। और ऐसा नहीं था कि अपने साथ ये दोनों बहुत कुछ लेकर गए, अब अटैची पैक कर कर कर, नहीं, कुछ नहीं अपने साथ लिए, ऐसे ही निकल पड़े। इसलिए रामायण में बताया गया है कि माता सीता से हमें ये शिक्षा मिलती है। और फिर माता सीता जो कि उनकी अर्धांगनी एक जीव की भूमिका निभाते हुए, अब लक्ष्मण जी, प्रभु श्री राम को अब लक्ष्मण जी के साथ वार्ता करनी है। तो अब देखिए लक्ष्मण के समक्ष जब प्रभु श्री राम जाते हैं और लक्ष्मण को जब ये समाचार मिलता है तो लक्ष्मण की सबसे पहली प्रतिक्रिया देखिए लक्ष्मण जी की। वो कहे किसने? दशरथ, अपने पिता, हमारे महाराज दशरथ, कैकेयी, भरत, इन तीनों को मार दूंगा मैं। तो समस्या किसकी है फिर? ये तीन है ना। महाराज दशरथ ने कैकेयी को दो वर दिए, कैकेयी भरत को राजा बनाना चाहती है, तो मैं तीनों को मार दूंगा। जाओ आप, जाओ राज्याभिषेक की तैयारी, आप आ जाना, मैं इनको खत्म करके आता हूं। ये देखिए, ये लक्ष्मण की सबसे पहली प्रतिक्रिया। तो प्रभु श्री राम अब लक्ष्मण को समझाते हैं कि लक्ष्मण देखो, नीति के अनुसार एक पुत्र को अपने पिता की विकट परिस्थिति में उसके साथ रहना चाहिए। तो मैं भी पुत्र हूं, तुम भी पुत्र हो, तो मैं विकट परिस्थिति में अब जा रहा हूं वन में, और इस विकट परिस्थिति में अब तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम रहो। तो लक्ष्मण कहते हैं, ये देखो प्रभु श्री राम, ये जो नीति आप सुना रहे हो कि नीति के अनुसार, प्रभु श्री राम ने कहा क्या कि नीति के अनुसार कहा गया है कि यदि जो विकट परिस्थिति में अपने पिता की सहायता न करे वो नरकगामी होता है। तो लक्ष्मण ने पूछा, तो अगर मैं सहायता करूं तो स्वर्ग जाऊंगा? तो प्रभु श्री राम ने कहा हां। तो लक्ष्मण ने कहा नहीं जाना मुझे स्वर्ग, न तो मुझे नीति का पालन करना है, न नैतिकता का पालन करना है, न मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे आपके साथ जाना है। मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे सब कुछ आप ही हो। न तो मैं अपने पिता को जानता हूं, न मैं अपने गुरु को जानता हूं, मैं केवल एक ही व्यक्ति को इस पूरे सृष्टि में जानता हूं, वो है आप। इसे कहते हैं दृढ़ भक्ति लक्ष्मण की। और ये अयोध्या का राज्य का भार आप मुझे दे रहे हैं, ये उसी प्रकार होगा जैसे एक हंस के ऊपर किसी ने पहाड़ रख दिया हो, हंस की पीठ पर कोई पहाड़ रख दे। ये नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, मुझे आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आप जहां पर हो वहां मेरे पिता हैं, आप जहां पर हो वहां मेरी अयोध्या, बस और कुछ मुझे नहीं सुनना। आप कहो तो इन्हें खत्म करूं मैं, आप यहां रहो, यदि आप नहीं रहते तो मैं चला आपके साथ। तो अब प्रभु श्री राम क्या कहे? तो उन्होंने कहा ठीक है, कम से कम अपनी माता सुमित्रा, अपनी माता सुमित्रा के पास जाओ और उनसे अनुमति लो, उनसे आज्ञा लो, क्योंकि एक पुत्र के ऊपर सबसे पहला अधिकार उसकी माता का होता है। तो जाओ अपनी माता से आज्ञा लेकर आओ। तो अब यहां पर देखिए माता सुमित्रा का चरित्र, कि माता सुमित्रा जैसी माता होनी चाहिए। तो अब लक्ष्मण जाते हैं अपनी माता के सामने, सुमित्रा देवी के सामने, और सुमित्रा देवी को यह समाचार सुनाते हैं कि प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला है। तो माता सुमित्रा इस समाचार को सुनते ही वो सहम जाती है। और माता सुमित्रा की स्थिति कैसी होती है? जैसे कि एक हिरणी वन की दावाग्नि में फंस गई है, तो कैसे वो हिरणी सहम जाती है, वैसे माता सुमित्रा। परंतु तुरंत अब देखिए माता सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मण से क्या कहती है। माता सुमित्रा कहती है, तुम जा रहे हो ना, सबसे पहले वाक्य यहां पर लक्ष्मण आज्ञा लेने आए थे तो थोड़ा उनके अंदर मन में थोड़ा भय था कि हो सके मेरी माता आज्ञा न दे। सबसे पहले सुमित्रा देवी, तुम जा तो रहे हो ना साथ में, या तुम पीछे रहने का निश्चय किया है तुमने? तो लक्ष्मण इतने ज्यादा प्रसन्न चित्त हुए, उन्होंने कहा हां मैं आज्ञा लेने आया हूं, हे माते मैं आज्ञा लेने आया हूं, आशीर्वाद लेने आया हूं। तो माता सुमित्रा कहती है कि ये भी तुमने गलत किया, क्योंकि तुम्हारी मैं मां हुई नहीं, तुम्हारे पिता हैं राम और तुम्हारी माता है सीता, तो तुम्हें सीता से जाके आज्ञा लेनी चाहिए और तुम्हारे पिता राम से जाकर आज्ञा लेनी चाहिए। और यहां पर सुमित्रा देवी अब देखिए लक्ष्मण जी को क्या उपदेश देती है। वो कहती हैं, तुरंत राम के साथ वन में जाओ और बिल्कुल भी मेरा और इस अयोध्या का स्मरण भी नहीं आना चाहिए 14 वर्ष तक तुम्हें, ये मेरा आदेश है, स्मरण भी नहीं आना चाहिए मेरा और अयोध्या नगरी का। 24 घंटे तुम्हें सेवा करनी है उनकी, और इस आदेश का पालन प्रभु अपने लक्ष्मण जी ने किया। पूरे 14 वर्ष लक्ष्मण एक झपकी, एक पलक भी नहीं झपके नींद की, 14 वर्ष तक वो जगे रहे और सीताराम की रक्षा के हेतु। तो दूसरा आदेश, 24 घंटे सेवा करनी है राम की, और यदि तुम इस प्रकार से प्रभु श्री राम की सेवा करोगे तो मैं अपना जीवन सार्थक मानूंगी कि मैं तुम्हारे मां कहलाने के लायक होंगी और तुम मेरे पुत्र कहलाने के लायक होगे। तो यहां पर माता सुमित्रा सिखा रही है, वो कहती है कि यदि वो मां जो ऐसे पुत्र को नहीं जन्मे जो राम का सेवक बने, उस मां को यदि ऐसा पुत्र वो नहीं जन्म सकती, जन्म दे सकती, तो उसे बांझ हो जाना चाहिए। माता सुमित्रा कह रही है अपने पुत्र को कि आज मेरा जीवन धन्य है कि मैं एक राम सेवक को जन्म दी हूं। तो ये माता सुमित्रा से इस मनुष्य समाज में माताओं को सीखना चाहिए कि यदि पुत्रों को जन्म देना है तो कैसे पुत्रों को जन्म देना है, जो प्रभु श्री राम की सेवा में, लक्ष्मण जैसे प्रभु श्री राम की सेवा में लगे, और वो भी कैसे, 24 घंटे, अर्थात फुल टाइम। ये रामायण में सुमित्रा देवी लक्ष्मण से कह रही है। और सुमित्रा देवी लक्ष्मण से कहती हैं कि वन में बहुत कठिनाइयां आएंगी, ये सारी कठिनाइयों को झेलते हुए राम की सेवा करते रहना। ऐसा नहीं कि बेटा वन में क्या होगा, कांटे कांटे और प्राणी और ये सब, ऐसा सुमित्रा देवी कोई चिंता नहीं करे। वो बोल रही कि जाओ वन में, कठिनाइयां अपने ऊपर लो, राम की सेवा छोड़ना मत। जैसे एक और माता थी सुनीति, उन्होंने अपने पुत्र ध्रुव महाराज को भी वन में भेजा, जाओ वन में, विष्णु वहां पर मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि माता सुनीति बैग पैक कर दी ध्रुव महाराज को, ये लो इसमें टिफिन है, इसमें तुम्हारे बिस्तर है, तकिया है, रजाई है, नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही जाओ वन में। और ध्रुव महाराज कितने बड़े थे, 5 वर्ष के केवल। तो माता सुमित्रा और सुनीति, ये जो एक माता का धर्म है वो निभा रही हैं कि अपने पुत्र को कैसा उपदेश, कैसा आदेश देना चाहिए, ये सुमित्रा और सुनीति से सीखना है। तो एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया रामायण में कि लक्ष्मण वन की ओर अब ऐसा आशीर्वाद लेकर निकले, कैसे, जैसे कि एक प्राणी को, मानो कोई मदारी किसी बंदर को पकड़ता है, वन से पकड़कर लाता है और उसे खूंटे से बांधता है, तो उस बंदर को जब वो मदारी खूंटे से बांधता है और किसी कारणवश यदि वो बंधन छूट जाए तो बंदर कहां जाएगा, जैसे ही वो बंधन छूट जाए तो बंदर कहां जाएगा, तुरंत वन की तरफ भागता है। तो वैसे ही लक्ष्मण का ये एक बंधन था मां का, तो लक्ष्मण उस प्राणी के समान थे जो इस बंधन से, उस खूंटे से बंधे हुए थे। अब जैसे ये बंधन छूटा तो लक्ष्मण वन की ओर भागने लगे, उस प्राणी की तरह जैसे प्राणी उस बंधन को छोड़कर वन की तरफ भागता है। अब रामायण में हम एक व्यक्ति के विषय में बहुत कम सुने होंगे, लक्ष्मण के संदर्भ में। वो हैं उनकी पत्नी उर्मिला। अब सुमित्रा देवी, उन्होंने ये नहीं कहा कि लक्ष्मण तुम भी जा रहे हो, अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, ये तो उर्मिला को कौन देखेगा। ऐसा कुछ नहीं, माता सुमित्रा ने बिल्कुल उर्मिला का नाम भी नहीं अपने जमान पर लिया, और उर्मिला ने भी ये नहीं कहा लक्ष्मण से, अरे तो मुझसे शादी क्यों की थी फिर। ये ऐसा नहीं कि उर्मिला ने अब कोर्ट केस डाल दिया लक्ष्मण के ऊपर कि क्यों की थी शादी। आजकल तो शादी नहीं करो तो भी कोर्ट केस डालते हैं लोग, कलयुग में ये स्थिति है, शादी करो तो कोर्ट केस, नहीं करो तो कोर्ट केस। तो यहां पर उर्मिला देवी ये अब लक्ष्मण को ये नहीं बोल रही। उर्मिला देवी के विषय में बताया गया है कि लक्ष्मण उर्मिला से मिले भी नहीं जाने से पहले, वो वहीं से सुमित्रा देवी के भवन से ही निकल पड़े। तो लक्ष्मण उर्मिला से मिले भी नहीं और उर्मिला ने 14 वर्ष तक शिकायत भी नहीं की, एक लफ्ज भी नहीं निकाला शिकायत का। तो ये है उर्मिला देवी का चरित्र। 14 वर्ष वो केवल प्रार्थना कर रही थी कि लक्ष्मण वहां पर सकुशल रहे राम और सीता की सेवा करने के लिए। इसलिए उर्मिला देवी का जो उनकी जो शरणागति है वो सर्वोपरि बताई गई है, क्योंकि जो रामचंद्र जी के साथ थे जैसे लक्ष्मण और सीता, वो तो अब राम के साथ हैं तो फिर क्या डर और क्या गम। परंतु भरत, शत्रुघ्न और उर्मिला देवी और ये बाकी सब यहां पे जो अयोध्या में रहे, इन सब की जो शरणागति है ये सर्वोपरि बताई है। तो इस प्रकार से अब प्रभु श्री राम लक्ष्मण, सीता, कौशल्या, इन सबको ये कैसे समाचार सुनाए हमने सुना। तो कल सुबह हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कल रामायण अपने रामनवमी का पर्व है, तो कल सुबह हम चर्चा करेंगे कि अब ये जो वन गमन प्रभु श्री राम का ये कैसे प्रारंभ हुआ। अब तक तो केवल समाचार सुनाया गया और कौन कौन अब जाएंगे ये निर्धारित हुआ, कौन कौन जाएंगे अब। हाँ, सीताराम लक्ष्मण नहीं, ये कुछ निर्धारित नहीं है कि कौन जाएगा, क्योंकि सारी अयोध्या नगरी जाने वाली है। तो प्रभु श्री राम अब एक एक अयोध्या वासी के पास तो नहीं जाकर बोलते कि तुम रुको तुम रुको, पूरी अयोध्या नगरी निकलने वाली है रामचंद्र जी के साथ। और अयोध्या वासियों ने कह दिया कि ये कैकेयी और भरत रहे अकेले और पूरी अयोध्या नगरी हम जाएंगे प्रभु श्री राम के साथ। ये अब किसके ऊपर राज्य करेंगे, एक दूसरे के ऊपर करें राज्य। तो अब तक कुछ निर्धारित नहीं कि उनके साथ और कौन कौन जाते रहेंगे। तो इससे समझ में आता है कि कितना प्रेम प्रभु श्री राम से एक एक व्यक्ति करता उस अयोध्या में। तो कल सुबह कार्यक्रम शुरू होगा मंगल आरती से, सुबह 5 बजे आप सब लोग आइए। प्रभु श्री राम का धाम है नासिक क्षेत्र और कल रामनवमी का उत्सव, तो सुबह से यदि हो सके तो आप लोग भाग लीजिए और संध्या का कार्यक्रम अभिषेक और प्रवचन कीर्तन महाप्रसाद के साथ होगा 6:30 बजे अभिषेक, शाम को 6:30 बजे अभिषेक होगा सीताराम लक्ष्मण जी का, और तत्पश्चात फिर श्रवण कीर्तन का कार्यक्रम। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र की, शिला प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदी।